ओम शांति। दुनिया का शोर दम भर को छोड़, जब मन का मौन हो जाता है, दुनिया का शोर दम भर को छोड़, जब मन का मौन हो जाता है, चंचल चित्त का चातक पंछी नीले नभ में खो जाता है, आनंद अलौकिक पाता है, बेहद वो हर्षाता है। साधना का प्रथम सोपान है मौन, वाणी का तप है मौन, सर्व प्राप्तियों का आधार है मौन, तप की भूमि पर प्रवेश द्वार है मौन। जितना जितना हम मौन की गहराई में उतरते जाते हैं, उतना ही हमारी साधना बलवती होती जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, अंतर्मुखता के रहने से, अंतर्मुखता की अंतर्गुफा में बैठकर योग के भिन्न भिन्न प्रयोग करने के बड़े सुंदर से अवसर मिलते हैं। हम सब मौन की महिमा जानते हैं, हालांकि मौन अपने में सम्यक नहीं है। जब मुख के मौन के साथ मन का मौन जोड़ दिया जाता है, तब मौन की सार्थकता सिद्ध होती है। बिना लक्ष्य के केवल मुंह पे पट्टी बांध लेने से, मौन कर लेने से, मौन की सार्थकता संपूर्ण नहीं होती है। हम सब जानते हैं, हमारे यज्ञ में बाबा मम्मा से लेकर सभी ने कभी ये किया हो कि वो इतने दिन का मौन रख लें, ऐसा नहीं हुआ है। बाबा ये कहते हैं कि मुख से तो वरदान लुटाना है, लेकिन अंतर्मुखता हमारी सबसे आवश्यक पुरुषार्थ भी है तो प्रारब्ध भी है। अंतर्मुखता का मतलब है मन का भी मौन रहे और मुख का मौन रहे। ये संयोग की बात है कि यज्ञ के प्रारंभिक दिनों में दादियों ने 14 साल की जब भट्ठी हुई तो उसमें मौन स्वतः ही उतर आया। एक एक हफ्ते तक, दो दो तीन तीन दिन तक जो संदेशियां, जो सूक्ष्म लीलाएं देखती थीं, जो प्रारंभिक दिन थे, यज्ञ के साक्षात्कार होते थे, ध्यान में चले जाते थे, नेचुरल अपने आप मौन हो जाता था। कभी प्रयास नहीं करना पड़ा कि मैं मौन में हो जाऊं, और उस प्रयास में इतने विचित्र लीलाओं के दर्शन करते थे, देखते थे कि सूक्ष्म वतन में चले जाना, वहां पर बाप दादा का दूसरा नाम था, दूसरा स्वरूप था, हमारी बड़ी बहनें सब जानती हैं, पीयू बोलते थे। उन दिनों में बहुत अच्छे अच्छे संदेश जाते थे और ऐसी ऐसी विचित्र लीलाओं का अनुभव होता था कि बाबा ध्यान में ही संदेशियों को, ये जो अपने बड़े बड़े चित्र बने, उन चित्रों का आविष्कार ध्यान में ही हुआ है। तो ध्यान, अंतर्मुखता, मन का मौन और मुख का मौन, ये बहुत आवश्यक रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि यज्ञ में जब जब विघ्न पड़े, तब तब बाबा ने, मामा ने, दादियों ने मौन का, साइलेंस का, योग का, निर्विघ्न रहने का एक बहुत अच्छा उपक्रम चलाया, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि बहुत बड़े से बड़े विघ्न ऐसे हट गए, ऐसे टल गए कि बहुत आसानी से, जैसे मक्खन से बाल निकल आए, ऐसे ही हम निर्विघ्न बन गए, विघ्न विनाशक बन गए। संयोग की बात है, हम सब भी अपने आरंभिक दिनों में मौन पर ज्यादा ध्यान देते थे। मुझे खुद याद है कि हम हर सोमवार को मौन में रहा करते और उसका रिजल्ट हम मधुबन में भेजते थे, मौन कैसे रहते हैं, कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए, सबके लिए जो दिनचर्या बनी थी, जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी थी, वो हमें पूरा पूरा याद है। ये एक विडंबना ही है कि पिछले कुछ समय से हम सब सेवाओं की वृद्धि के साथ जो मौन को जितना प्राथमिकता देना चाहिए, जितना अंतर्मुखता पर ध्यान देना चाहिए, लगभग भूल गए, लगभग भूले हैं, सब नहीं। कई पुरुषार्थी भाई बहने बहुत अच्छे पुरुषार्थ अभी तक भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास जारी है। मैंने ऐसे भी अनुभव सुने हैं, कई सेंटर्स की बहनें एक हफ्ते का अपना प्रोग्राम बना लेती हैं, एक हफ्ते में एक दिन ये बहन रहेगी मौन, एक दिन वो मौन में रहेगी, अपने मोबाइल दूसरे को दे देते हैं, अगर कोई आवश्यक मैसेज है तो नोट कर लेते हैं। और कई तो सेवा केंद्रों के तो पक्का है कि दीदी का मौन सोमवार को होना है, डेट फाइनल है, जो भी करना हो उसके पहले कर लो दूसरे दिन में। ये मौन का इतना अच्छा उपक्रम रहा है कि इसका फायदा बहुत है, बेनिफिट बहुत है। और अगर व्यक्तिगत स्तर से लेकर के यज्ञ में एक बार फिर से यह लहर दौड़ाई जाए, जैसे बहन ने बताया कि मौन पे और कई जगह अच्छे प्रयास चल रहे हैं इन दिनों में, तो अगर ये मौन सामूहिक रूप से जोन लेवल पर, हेडक्वार्टर लेवल पर, सब जोन लेवल पर या सेंटर्स लेवल पर भी चले, तो ये मौन हमारी प्रत्यक्षता के, प्रभु प्रत्यक्षता के परिवर्तन के पर्दे को उठाने में और प्रभु प्रत्यक्षता करने के प्रयास को उड़ती कला के पंख देंगे। और मैं समझता हूं कि आगे चल करके यही मौन हमारा अंतिम समय में हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता, हमारी तपस्या, हमारे तेज, हमारी पवित्रता, हमारी सत्यता, इन सबको, संतुष्टता को, इन सबको प्रत्यक्ष करने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा स्टेप है, और यहां से जाने के बाद भी आप सब इसको और भी अमल में लाएंगे, बड़े लेवल पे लाएंगे, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा होगा। प्रश्न यहां उठता है कि मौन कैसे रखा जाए, और भी बातें होती रही हैं, कई प्रयास करते हैं कि मौन एक दिन में रहे, हर हफ्ते में एक दिन मौन में रहे, मास में भी कोई कोई रखते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अच्छा हो कि हम हफ्ते में एक दिन मौन में रहें, अपने सब कामों को निवृत्त कर लें, और वैसे भी हर दिन हमारा 4 से लेकर के 6 घंटे तक मौन अगर हो जाए तो एक नेचुरल तपस्या हो जाएगी। और ये मौन का जो तप है ये हमारी सिद्धि को प्रत्यक्ष करेगा और हमारी साधना को भी आगे बढ़ाएगा। मैं स्वयं हमेशा हर दिन कोई न कोई प्रोग्राम चलता है, मुझे मालूम है उसमें काफी वाणी में आना पड़ता है, खूब रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, मगन होता हूं उसमें, लेकिन ध्यान रहता है कि जितना मैं बहिर्मुखी बनूं उतना ही मैं अंतर्मुखी बन जाऊं। इसलिए यज्ञ में आए तब से ही मेरा एक प्रयास रहा कि मैं पहले राजयोगी हूं, फिर इसके बाद गीतकार हूं, कवि हूं, लेखक हूं, सेवाधारी हूं, फिर दूसरा चीज मैंने सोचा। और इसी को लेकर के जब आगे बढ़े तो यही कारण है कि यज्ञ में 40 वर्ष तक ये जो गीत और संगीत का जो होता है पार्ट, आप सब जानते हैं, बड़ा मायावी पार्ट है, क्योंकि वाणी में आते हैं, मंच पे हमेशा रहते हैं, ढेर सारे आकर्षण होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम अच्छे लगते हैं, हमें भी बहुत लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें भी रहकर एक बाबा दूसरा न कोई, इसको मैंने अपने जीवन का अंग बनाया, इसलिए आज तक सुरक्षित अपने आप को पाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस ईश्वरीय जीवन में तप को मैंने समझा, योग ज्ञान हर सब्जेक्ट्स में बैलेंस बराबर बना रहे, इस चीज को लिया। मैंने अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य बना लिए, उन लक्ष्यों में सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने संकल्प किया कि मुझे मधुबन निवासी बनने के बाद 2 बात का पक्का कर लिया। एक तो मुझे मधुबन निवासी बनने के बाद मधुबन की दिनचर्या को पूरा पूरा फॉलो करना है, कोई ये न कहे कि मधुबन निवासी होकर के इनकी दिनचर्या कुछ और है। इसलिए मैंने उसी समय पक्का कर लिया कि अब मधुबन में आने के बाद मेरा एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं। और इसका रिजल्ट यह रहा कि बड़ी दादियों से, दादी जानकी से, प्रकाशमणि दादी से, बाबा से कई बार मुझे इसमें इनाम भी मिला, बड़ा प्रोत्साहन मिला। मैंने सोचा नहीं था ये भी एक कला है, ये भी एक गुण है। अच्छी बात रही कि मैंने कभी 40 साल में अमृत बेला मिस नहीं किया। दूसरी बात यह रही कि मधुबन की दिनचर्या, कोई भी दिन मधुबन में हूं तो भी गुड मॉर्निंग करके, गुड नाइट करके ही बाबा को सुनना है। बाबा की मुरली को लिखने का भी पार्ट बोर्ड पे जो लिखते हैं, ये शुरुआत में यहीं से हुई हिस्ट्री हॉल में, आज से बहुत साल पहले 80-82 की वर्ष की बात है, तब की बात है जब मैं नया आया था। तो दादी जी ने कहा कि मेरा विचार है कि कहीं एक मुख्य स्थान पर कुछ पॉइंट्स लिखा जाए ताकि आते जाते चलते फिरते सबके बुद्धि में रिवाइज होता जाए। लेकिन लिखेगा कौन? तो मेरे पास में जो बैठे थे, मेरा हाथ उठाया, कहा दादी इसकी राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग, ये लिखे तो बहुत अच्छा है। तो कहा लिखोगे? हमने कहा जी दादी। ब्लैक बोर्ड बनाया, चाक से लिखना शुरू किया। कुछ समय के पश्चात, लगभग 1-2 महीने में ही, फिर ये काम जो है बाकायदे दादी जी ने हमारे राजू भाई को दिया। तब से पहले स्वउन्नति के लिए दृढ़ संकल्प होता था, फिर अभी धारणा के लिए सार हो गया, फिर वरदान भी जुड़ गया, फिर स्लोगन बन गए, और ये सब सेवाएं होती है देश विदेश में। आज सब जगह जो बोर्ड पे लिखने की सेवा है, ये प्रारंभ होगी। तो मैं मुरली को, प्रातःकाल की योग को, कर्म योग के लिए ये जो गीत बने हैं, गीत लिखे नहीं गए असल में, ये अपने आप उतरे हैं, अनुभव में उतरे हैं, उसको लिखने का प्रयास किया और इतनी अच्छी अच्छी चीज बन गए कि मैं स्वतः ही उसमें मगन हो जाता हूं। हर दिन कुछ बाबा की अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, और इतनी प्रेरणाएं दिव्य मिलती हैं, अद्भुत मिलती हैं, कि मैं उसमें घंटों घंटों तक उसमें गुम हो जाता हूं। मुझे पता ही लगता है कि देह का भान हो, दुनिया का भान कहाँ है, पूरे नक्की लेक को घूम लेता हूं। मुझे पता नहीं लगता उस मुकाम से मैं कब गुजरा, क्योंकि अपने धुन में मगन हूं, और वो बाबा की याद, बाबा की प्रेरणाएं, बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं, वो दिव्यताएं और बाबा की सब देन है। इसलिए मैं इसको यूं कहता हूं, यही मन में हरदम है, बाबा हमारे तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, मिले सिद्धियां शक्तियां सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए। ये जो भी मिली है तुम्हारे बदौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी ही दौलत, हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं हमको खुद पे गुरूर आ न जाए, यही मन में हरदम है, बाबा हमारे तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। तो बहुत अच्छा एक उपक्रम रहा। मैं समझता हूं कि फिर से यज्ञ में एक लहर आए, मौन की साधना को स्वयं के स्तर पर, सेवा केंद्र के स्तर पर और आगे बढ़े ये, और हमारी वो प्रत्यक्षता के दिन बिल्कुल समीप आ रहे हैं। हम तो अंत के नज़ारे फिर देख रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और भविष्य के नज़ारे भी दिखाई पड़ रहे हैं। रोज ही आज भी मैंने एक गीत में यही लिखा कि उधर सुन रहे हैं विनाश के नगाड़े, और इधर बज रहे हैं नवयुग, इधर दिख रहे हैं नवयुग के नज़ारे। तो अभी समय आ गया है सही समय पर सही कुछ करने का, तो आप सब इस पर विशेष कार्य करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। हम सब मधुबन में इस महान तीर्थ स्थल पर, इस तपोभूमि में आए हैं। यहां पर आते ही प्यारे बाबा की मधुर याद हमें आने लगती है। चलते हैं याद की यात्रा पर। हमारी याद की यात्रा में हमारी तपस्या के 4 भाग हैं। एक तो आत्मभिमानी बनने की हम तपस्या करते रहें, दूसरा है निरंतर याद की तपस्या, तीसरा है संस्कार परिवर्तन की तपस्या, और चौथी तपस्या है संपूर्ण पावन बनने की तपस्या। हम सबका लक्ष्य है कि हम निरंतर योगी बन जाएं। आज भी बाप दादा कल भी बता रहे थे, ये मधुबन है, होलीस्ट ऑफ होली चर्च है। मधुबन की महिमा हम सब जानते हैं, कितना सुंदर संयोग बना है ऐसे सुंदर से वातावरण में, तपोभूमि में आने का मौका मिला है। आइए निरंतर याद की तपस्या में तीन भाग हैं, निराकारी याद, आकारी याद और साकारी याद। दादियों ने जिस याद से अपनी याद को निरंतर बना लिया, हर पल बाप दादा के प्रेम में स्नेह में समाकर कर्मातीत बनी, संपूर्णता को करीब लाई, वही यात्रा हम भी करते हैं। आप सब भी मधुबन के चारों धाम का चक्कर लगाएं, चलते हैं इस यात्रा पर। मैं खुश नसीब आत्मा संगम युग पर मुझे ये ईश्वरीय परिवार प्राप्त हुआ है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा मधुबन निवासी बनकर प्यारे बाप दादा की इस कर्तव्य भूमि तपो भूमि ये यज्ञ महायज्ञ इसके सुंदर और पवित्र शक्तिशाली वातावरण में जो मुझे बाप दादा के पास उनकी यादों में समाने का सुअवसर मिला, हृदय के रोम रोम गहराइयों से बाबा आपका धन्यवाद करते हैं। ये मधुबन वही स्थल है जहां पर वर्षों वर्ष सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने सारे विश्व को एक आदर्श दिया। स्वयं ब्रह्मा ने सारे संसार को समस्त ज्ञान का सार दिया। ये वही भूमि है जहां पर प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बने। ये भूमि देवताओं की कर्म भूमि है, शक्तियों की रंग भूमि है, फरिश्तों की भाव भूमि है, सारे संसार के लिए लाइट हाउस है। मधुबन का कण कण मधुबन के बाबा की स्मृति दिलाते हैं। ये वही भूमि है जहां पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ मातृशक्ति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने अपना श्रेष्ठ सर्वोत्तम विश्व नाटक में अभिनय किया। धन्य है वह विभूतियां जिन्होंने साकार माता पिता के साथ इस विश्व नाटक में अपना अभूतपूर्व अभिनय करके अपना नाम अमर कर लिया। धन्य है हम भी जिन्होंने उन महान आत्माओं के साथ उनकी सेवाओं का, उनकी पालना का, उनके प्रेम का एहसास किया। मधुबन के चारों धाम प्यारे बाबा की सहज याद में समा लेने का सर्वोत्तम माध्यम है। समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ, उदासी दूर भगानी हो तो कुटिया में आ जाओ। रूरियान करना हो, हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। ये हिस्ट्री की मिस्ट्री हमें प्यारे बाप दादा की यादों में समा देने वाला है। शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ, बाबा आपने हमें इन चारों धामों के विशेषताओं को बताकर हमें साकार की याद में समाने का बहुत सुंदर सा अवसर दिया। सिमर सिमर मन आठों याम मधुबन के ये चारों धाम, दिल को सुकून मन को आराम देते हैं ये चारों धाम। आज भी बाबा के कमरे में बैठते हैं ऐसा लगता है कि वो फरिश्ता हाथों पर सिर टिकाए हुए नए विश्व निर्माण की योजना बना रहा है। बाबा का कमरा रूहानियत की खुशबू से भरा, हर बच्चे को नित नया आभास कराता है। ये वही कमरा है जहां ब्रह्मा बाबा छोटे से कमरे में विश्व के निर्माता सृष्टि रचता स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा रहा करते थे। जीवन जीने की कला सिखाई। स्वयं कमरे में रहकर छोटे से, स्वयं झोपड़ी में रहकर बच्चों का बहुत ख्याल रखा, भवन बना के दिए। ये वही बाबा का कमरा है जहां हर किसी को नई नई अनुभूतियां होती है। हम बाप दादा से मिलकर उनके समान बन जाते हैं। संसार का सर्वोत्तम, सर्वोच्च वो स्थान मधुबन, और मधुबन में बाबा का कमरा। बाबा, आज भी हम जब आते हैं आपको निरंतर तपस्या में लीन देखते हैं, आज भी आपसे मिलते हैं ऐसा लगता है कि कमरे में बैठे बैठे आप हम बच्चों की पालना पूर्ववत कर रहे हैं। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। कुटिया में आते ही ऐसा लगता है कि बाबा मुझे पत्र लिख रहे हैं। बाबा, ये आपकी कुटिया, आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी महानता से हमारा परिचय कराती है। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। मजमून खत का ओ बाबा इतना साकार दिन वो नहीं भूलते हैं। अमृत वेले आंगन में देते, दृष्टि वो लेती बच्चों की टोली। आज भी बाबा आप मधुबन में अपनी उपस्थिति का, अपनी हाजिरी का हमें एहसास कराते हैं। बगिया में देखा फूलों से हंसते, पहुंचे वहां तो जाने कहां छुप जाते। मुस्कुराते हंसते फिर देखते बच्चों को बाबा खत आप लिखते। संग वो रुपहले, दिन वो सुनहरे, यादों के पर्दे पे हम देखते हैं साकार दिन वो नहीं भूलते। मधुबन का आंगन, वही शक्ति आज भी, वही स्नेह आज भी, वही प्यार पुचकार, वो दृष्टि का देना, पीछे पीछे होना, बच्चों का आपकी तरफ बढ़ना, सब याद आता है। बाबा, जो आपने हिस्ट्री हॉल में महावाक्य उच्चारण किए, आज भी लगता है कि सारा संसार सामने है और पूरे विश्व परिवार को बाबा आप अपने महावाक्य उच्चारित करके बच्चों को मुरली सुना रहे हैं। प्यारे बाबा, जब हिस्ट्री हॉल में पहुंचते हैं, यज्ञ इतिहास हमारे नैनों में झूम जाता है, घूम जाता है। दादियों की वो लगन, वो त्याग, वो तपस्या, वो समर्पण, वो बलिदान सहज स्मृति में आते ही मन उस यज्ञ की स्थापना के पलों को याद कर आपके प्रेम में समा जाता है। कोई नहीं कह सकता है मुझे बाबा की याद नहीं आती। पल पल आपकी यादें इतनी जीवंत हैं, जो हमारे जेहन में, हमारे अंतःकरण में आपका प्यार समा देती है। वो यादें भला कौन भूल सकता है बाबा, जो प्यार आपने मधुबन में दिया। शांति स्तंभ पर पहुंचते ही यूं लगता है कि शांति दूत यहां पर लेटा है। ऐ पवन, तू शांत चल, यहां फरिश्ता है। ऐ पवन, मत शोर मचा, मुझे मेरे बाबा से सुनने दे, मुझे मेरे बाबा से मिलने दे। मधुर महावाक्य शिलालेख पर पढ़ते ही मन आनंद विभोर हो जाता है। दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना हमारे अति प्रिय पिताश्री की दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया, जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें साकार माध्यम के निमित्त बने, जो अव्यक्त रूप में स्थित होकर हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। समय कम है, गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। प्यारे वत्सों, परमपिता सबके शिव परमपिता हैं। भारत देश सब देशों में महान देश है। आबू तीर्थ परम तीर्थ स्थान है, ये रहस्य सबको समझाना। निश्चय में ही विजय है। ज्ञान मूर्त बनो, प्रेम मूर्त बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ पर लौकिक बाप को याद करो। लाडले बच्चे, इस राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकिल अधे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य है। मन वचन कर्म से दुख ना दो, बेहद बाप और वर्षे को याद करो। प्यारे वत्सों, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वो स्थान है, 18 जनवरी का दिन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का प्यारा सा वो नजारा, अव्यक्त में दुबारा हमको दिखा रहे हो। पहले तो थे बुलाते मधुबन में, अब वतन में करके हमें इशारा, अब भी बुला रहे हो साकार में मिलन का, साकार में मिलन का। कमरा ही तो है बदला, कपड़ा ही तो है बदला, बाकी वही है सारा बाबा सुना रहे हो। आखिर तलक रहेंगे, आखिर तलक रहेंगे बच्चों के साथ हर पल, वादा वो प्यारा प्यारा अभी निभा रहे हो साकार में मिलन का। जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, उसी राह पर हमें भी बाबा चला रहे हो। मधुबन में पहले तुमने तो खुद किया तपस्या, आकर वतन से हमसे वही तप करा रहे हो। साकार में मिलन का, साकार संग वाले प्यारे से दिन निराले आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना वो दिन सुहेज वाले वो दिन सुहेज वाले हाथों से वो खिलाना गोदी में वो बिठाना आँखों में आंसू आना कह कर के बच्चे बच्चे वो खेलना खिलाना वो सैर का कराना आगे को बढ़ते जाना हाथों को फेर सर पे हाथों को फेर सर पे बड़े प्यार से उठाना गोदी में वो बिठाना नैनों में वो समाना वट वृक्ष के तले तक वट वृक्ष के तले तक देने विदाई जाना रुमाल का हिलाना आँखों में आंसू आना वो लाल अक्षरों के वो लाल अक्षरों के खत याद हैं अभी भी वो दिन साकार वाले भूलेंगे ना कभी भी ये प्यार भी न कम है ये प्यार भी न कम है आंखें भले ही नम है वो प्यार अब भी बाबा अपना दिला रहे हो मालूम हमको आंसू मालूम हमको आंसू आंसू नहीं ये मोती इन मोतियों को चुन चुन माला बना रहे